मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 25 फरवरी 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 5 नौजवान मित्रों का जिन्होंने एकेडमी की बस अब इसी सप्ताह के रविवार से शुरू होने वाली क्लासेस में दाखिला लिया है। इन दोस्तों के नाम हैं हीर सिंह, उदयनगर जिला जयपुर राजस्थान से, सुमित कुमार कोटा राजस्थान से, जितेंद्र यादव आपका गांव है राघवपुर जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश से, साजिद हुसैन आप हैं मुंबई से, और मनीष कुमार सिंह आपका गांव है कलहनसन बरवालिया जिला गोंडा उत्तर प्रदेश से। तो हीर, सुमित, जितेंद्र, साजिद और मनीष, आप 5 मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी जैसे ही मैंने कहा कि इसी सप्ताह के रविवार से शुरू होने वाली क्लासेस, सच पूछिए तो मैं थोड़ा सा रोमांचित हो उठा। हो सकता है कि मेरी अपनी कमजोरी हो, लेकिन मैं तो इसे अपनी शक्ति मानता हूं, क्योंकि रोमांचित हो जाना कहीं न कहीं जिसके प्रति आप रोमांचित हो रहे हैं, जिस घटना के प्रति, डेफिनेटली उसके प्रति आपका समर्पण भाव और आपके लगाव को व्यक्त करता है। और इसमें कोई दो राय नहीं मित्रों कि ये जो 15 दिन की क्लासेस होती हैं, इन क्लासेस के प्रति मेरा ही नहीं बल्कि एकेडमी से जुड़े हुए हरेक का जबरदस्त किस्म का समर्पण होता है। वो समर्पण यहां आने के बाद आप महसूस भी करेंगे, देखने की बात मैं नहीं कह रहा, उस समर्पण को आप महसूस भी करेंगे। और सच पूछिए तो मैं यहां आने वाले अपने सभी स्टूडेंट से ये उम्मीद करता हूं कि वह भी इसी तरह के समर्पण के भाव को लेकर यहां आए, पूरे समर्पण भाव के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा वह इन 15 दिनों का इस्तेमाल कर सकें। और मैं ये आपको आश्वस्त करना चाहूंगा AFAIS की पूरी टीम की ओर से मित्रों, कि ये 15 दिन आपके जीवन के खजाने, स्मृतियों के खजाने के बहुत ही महत्वपूर्ण दिन साबित हो सकते हैं, बशर्ते कि आप अपने प्रति ईमानदारी बरतें। ये आपके जीवन के लिए बहुत संभव है कि एक टर्निंग प्वाइंट हो सकता है, टर्निंग प्वाइंट इन द सेंस कि बहुत ही सकारात्मक दिशा की ओर ले जाने वाला मोड़, ये आपके 15 दिन बन सकते हैं। तो दोस्तों, अब जबकि आज हम सोमवार में पहुंच गए हैं और रविवार को आमने सामने होंगे, सोच करके देखिए कि कितना लंबा दौर था जब आप सबने रजिस्ट्रेशन कराए थे और अब धीरे धीरे एक एक पग चलते चलते वक्त अब बिल्कुल दरवाजे के करीब आ पहुंचा है। तो दोस्तों, इसके बारे में हम लोग और बातें करेंगे, खासकर जो क्लास में आने वाले हमारे स्टूडेंट हैं उनको मैं एक दिन और कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा जो उनकी यात्रा के बारे में होगा, लेकिन आज मैं जानबूझकर वह इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा हूं। समय आने पर डेफिनेटली मैं आप सबसे इसी माध्यम से बात करूंगा। तो फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत अब मैं जरा भारत पाकिस्तान संबंधों पर कुछ बात करना चाहूंगा, और भारत और पाकिस्तान के संबंध पर जो हमारी बात होगी वो केवल एक ही एपिसोड में नहीं होगी, एक से अधिक एपिसोड की जरूरत पड़ेगी। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से अब यह विषय आगे बढ़ता जा रहा है, महत्वपूर्ण होता जा रहा है, आपको इस विषय के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानना ही चाहिए, भले ही सिविल सर्विस में न पूछा जाए, तो इसके बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा। तो आइए पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। मित्रों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही एक दिन पहले, वो ये कि हमारी जो लड़ाई है वो कश्मीर के लिए है, हमारी जो लड़ाई है वो कश्मीर के लिए है, कश्मीरियों से नहीं है। मैं समझता हूं कि बहुत ही खूबसूरत भाषा में और बड़े ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने देश से बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण और आज के समय में, अभी के समय में बहुत जरूरी अपील की है। मित्रों, प्रधानमंत्री अपील कर चुके हैं तो अब दूसरे किसी के कहने का कोई विशेष अर्थ नहीं रह जाता, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी की इस बात के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हुए, पूरी तरह से समर्थन करते हुए आप सब अपने प्रिय श्रोताओं से अपील करना चाहूंगा कि उनकी बात पर गौर करें। वो कह रहे हैं कि हमारी जो लड़ाई है वो कश्मीर के लिए है, कश्मीरियों से नहीं। देखिए कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जहां जो कश्मीर के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उन पर अटैक किया गया या उनसे जो भी हो हाथापाई हुई है, जिस तरह से भी घटनाएं घटित हुई हों। दोस्तों अगर सोचिए कि हम ऐसा ही करेंगे तो जो कश्मीरी हैं उनके मन में फिर किस तरह की भावनाएं आएंगी। देखिए सीधी सी बात है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर से हम प्यार करते हैं, तो कश्मीर से प्यार करना, कश्मीरियों से ही प्यार करना है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम कश्मीरियों से प्यार नहीं करेंगे और कश्मीर से प्यार करेंगे। दोस्तों दो या तीन साल पहले मैडम और मैं कश्मीर की यात्रा पर गए थे और हम लोगों ने 7-8 दिन पूरे कश्मीर की यात्रा की। मैं जम्मू की बात नहीं कर रहा हूं, कश्मीर की बात कर रहा हूं। वहां व्यक्तिगत रूप से लोगों से हम मिले, उनसे बातचीत की। मैं लोगों की बात कर रहा हूं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो आतंकवादियों के समर्थक, कुछ लोग होते हैं हर जगह होते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन आप आम लोगों से जाकर मिलिए और बात कीजिए और उनके चेहरे को वाच करने की कोशिश कीजिए तो आप पाएंगे कि वो भारत से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और भारत को ही अपना मानते हैं, भारतीयों को अपना मानते हैं। क्योंकि जिस तरह से वो स्वागत सत्कार कर रहे थे, बातें कर रहे थे, उससे बात एकदम समझ में आ जाती है कि सच में ये चाहते क्या है। और देखिए सीधी सी बात है कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं, चाहे वहां की राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे वहां की सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे वहां की धार्मिक व्यवस्था हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वहां की आर्थिक स्थिति हो, पूरी दुनिया जानती है। तो क्या आपको लगता है कि कश्मीरी नहीं जानते होंगे? वो जानते हैं, वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। चलिए हम बहुत उधर जाकर के बात भी कर लें कि हमारे हित कहां हैं, इसके बारे में उनके दिमाग में कोई डाउट नहीं है। वो जानते हैं कि हमारे हित भारत में ही हैं। इसलिए दोस्तों को मुझे लगता है कि इस घड़ी में, खासकर जिस अभी हम महत्वपूर्ण घड़ी की दहलीज पर खड़े हैं, एक नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, हम कम से कम अपने अपने स्तर पर इतना तो कर ही सकते हैं कि अगर हमारे आसपास कोई कश्मीरी है तो हम न केवल उनसे प्यार करें बल्कि उन्हें पूरी तरह से आश्वस्त भी करें। हमारी सेना सीमा पर अपना काम कर रही है, नागरिक के रूप में हम सबको भी अपना अपना काम करना है। और फिलहाल प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है, मैं समझता हूं कि इस महत्वपूर्ण अवसर पर वो हम सभी नागरिकों का एक बहुत ही परम कर्तव्य है। तो दोस्तों आप सब भी इस पर ध्यान दें और अपने अपने स्तर पर जो भी कर सकते हैं करने की कोशिश करें। मुख्य विषय दोस्तों, दूसरे खबरों के तहत, मुख्य विषय पर तो हम लोग बाद में आएंगे, दूसरी खबरों के तहत दो बातें महत्वपूर्ण है। एक तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, आज उसका शुभारंभ होने जा रहा है, आज उसका उद्घाटन होने जा रहा है, जिसमें आजादी के बाद से अब तक जो लगभग 25,000 हमारे जवान शहीद हुए हैं, अलग अलग तरह की घटनाओं में, युद्ध में शहीद हुए, आतंकवादी गतिविधियों में शहीद हुए, नक्सलाइट में शहीद हुए, यहां तक कि जो शांति वाहिनी सेना थी उसके तहत शहीद हुए, उनकी स्मृति में यह राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाया गया है। उसके पास भी है, आपने देखा इंडिया गेट, इंडिया गेट में हमारे आजादी से पहले के जो जवान शहीद हुए हैं अंग्रेजों की तरफ से लड़ते हुए, वो उनके स्मृति में, पावन स्मृति में वहां एक ज्योति भी जलती है, अगर आप गए हो तो वो है। और अभी ये राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो बनाया जा रहा है आजादी के बाद के हमारे शहीद नौजवानों की स्मृति में है, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना। और दुनिया के आप दूसरे कहीं भी देश में चले जाइए तो आप पाएंगे कि वहां जो हमारे सेनाओं की स्मृतियों में बहुत इस तरह के पावन स्मारक खड़े किए गए हैं। मुझे बहुत से इस तरह के स्मारकों में श्रद्धासुमन अर्पित करने का मौका मिला है। तो दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण घटना है जो बहुत लंबे समय तक आपके जनरल स्टडीज में काम आता रहेगा। एक और भी बड़ी बात दोस्तों वो है कि अफगानिस्तान, आपको मालूम है कि एक चाबहार बंदरगाह इसका नाम आपने सुना होगा, जो बकायदे ईरान में है, उसके उस बंदरगाह के जरिए अब अफगानिस्तान ने निर्यात करना शुरू कर दिया है। और आपको मालूम है कि चाबहार बंदरगाह का निर्माण करने में भारत की बहुत बड़ी भूमिका रही है और इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कूटनीतिक महत्व भी है। दोस्तों, 2 साल पहले इस पर प्रश्न भी पूछे गए थे और ये अभी भी प्रश्न पूछे जाने की क्षमता इसलिए रखता है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और खासकर अब जब आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध और उधर मध्य पूर्व एशिया में जो तनाव की स्थिति बनती जा रही है, ऐसे समय में चाबहार बंदरगाह का शुरू हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चूंकि वक्त नहीं है मैं इस पर कुछ बात कर सकूं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि प्लीज इस पर आप लोग जरूर तैयारी कर लें, छोटा सा एक नोट बना लें कि चाबहार बंदरगाह क्या है और इसका किस तरीके का कूटनीतिक महत्व भारत के संदर्भ में है। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर और वह भारत पाकिस्तान संबंध। पहली बात, कश्मीर की समस्या क्या है, इसको लेकर आपको ध्यान होगा कि मैं बात कर चुका हूं कि किस तरह से भारत में कश्मीर का विलय हुआ था। वो बहुत ही संवैधानिक विलय था, कश्मीर के खुद महाराजा ने उस विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। मित्रों, अब मैं थोड़ी सी चर्चा खासकर कश्मीर को लेकर के किस तरह का विवाद है और ये मामला क्यों उलझा है, इससे मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूं। देखिए, आपको इससे पहले के एपिसोड में मैंने बताया था कि ये मामला फिर यूएनओ में भारत ले गया और यूएनओ में ले जाने के बाद वहीं पर युद्ध विराम हो गया और जहां से युद्ध विराम हो गया बस उस वहां तक जहां पाकिस्तान की सेना पहुंच पाई थी उसे अब कहा जाता है पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और इसी को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में सबसे बड़ा विवाद है भी। हालांकि पाकिस्तान तो पूरे कश्मीर की बात करता है और हम कहते हैं कि बाकी कश्मीर तो हमारा ही है, लेकिन जो यहां तक कि तुमने जो हमारा ऑक्यूपाई कर रखा है लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर, वो भी हमारा है, तुमने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, राइट। अब आप देखिए कि इसमें प्रॉब्लम आई कहां से, थोड़ी सी हम उस प्रॉब्लम को देख लेते हैं क्योंकि अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको इसके समीक्षात्मक तरीके से ही उत्तर देने होंगे। दोस्तों, अब जो हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो ये मानते हैं कि भारत से एक गलती हो गई कि उसने यह मामला यूएनओ तक पहुंचा दिया। कहा जाता है कि यह मामला यूएनओ में ले जाया ही नहीं जाना चाहिए था क्योंकि युद्ध चल रहा था और भारतीय सेना तो उस समय बहुत प्रबल थी ही, खासकर उनकी तुलना में, तो भारत के लिए जीत हासिल कर पाना कोई मुश्किल काम नहीं होता। लेकिन चलिए, अब उस समय की स्थितियां होती हैं, जो होना था वो हो गया। जब समीक्षा होती है तब बात अलग होती है, जिसके तहत हम कह सकते हैं कि नहीं ले जाना चाहिए था। और उसका कारण यह है कि इसके बाद हम देखे कि हमने फिर यूएनओ में की इस बात को भी माना कि वहां जनमत संग्रह कराया जाए। जनमत संग्रह कराया जाने का मतलब है कि वहां की जो जनता है वह भारत में रहना चाहती है या पाकिस्तान में रहना चाहती है, जनमत संग्रह कराया जाए। यह भी एक गलती थी क्योंकि जो जनमत संग्रह की बात है वो न तो राजा हरि सिंह चाहते थे कि ऐसा कुछ हो, भाई वो तो राजा ही थे, जब उन्होंने साइन कर दिए कि मैं भारत में विलय करता हूं तो फिर वो क्यों चाहेंगे कि जनता से पूछा जाए, खत्म हो गई, जनता के प्रतिनिधि तो वही है। और उस समय जो लोकप्रिय नेता थे वहां के वो थे शेख अब्दुल्ला साहब, वो भी नहीं चाहते थे कि जनमत संग्रह की कोई बात हो। और अनफॉर्चुनेट पार्ट था कि हमने ये बात मान ली जिसको बीच बीच में कभी कभी पाकिस्तान उठाता भी है। अब मैं बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पर आता हूं फ्रेंड्स, और इसे आपको नोट कर लेना चाहिए क्योंकि इसमें रेफरेंस है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। चलिए, यूएनओ में मामला ले जाया गया। अब जो एक कुछ लोग हैं कहते हैं कि यूएनओ में जो ये मामला ले जाया गया उसके लिए जिस अनुच्छेद का इस्तेमाल किया गया वो गलत था। अब इसको थोड़ा सा ध्यान दिया गया कि वहां की जो सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके चार्टर के अनुच्छेद 39 संयुक्त राष्ट्र के यूएनओ के सुरक्षा परिषद का जो चार्टर है उसके अनुच्छेद का 39 है, ये है अध्याय सात का अनुच्छेद 39 भी आप कह सकते हैं, के अंतर्गत उठाना था, कहना था कि उसको इसके अंतर्गत उठाना था क्योंकि इसका संबंध शांति के उल्लंघन तथा आक्रमण की कार्रवाई से था। अगर हम इसके तहत उठाते तो हम ये कह रहे हैं इसका मतलब हुआ कि पाकिस्तान हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है और इस तरह से आक्रमण करके शांति का उल्लंघन कर रहा है। इससे होता यह कि जो पाकिस्तान है वो आक्रमणकारी घोषित हो जाता क्योंकि हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उठाया गया वह अध्याय 6 के अनुच्छेद 35 के अंतर्गत, फिर से मैं रेफरेंस दे रहा हूं, अध्याय 6 का अनुच्छेद 35। इसका जो संबंध है वह है विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे से, यानी कि दो देशों के बीच में विवाद हो गया है तो इसका शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा किया जाए, जबकि यह विवाद नहीं था तो सीधे सीधे आक्रमण था। तो इससे क्या हुआ कि पूरी दुनिया में यह मैसेज चला गया कि जो कश्मीर का मामला है इनफैक्ट ये एक विवादास्पद मामला है, दुनिया ने उसको इस तरीके से लिया, जबकि कश्मीर का मामला विवादास्पद मामला था ही नहीं, रत्ती भर भी नहीं था। और आप सोचिए कि चलिए उस समय तो ये बात थी, और बाद में वहां जो निर्वाचित सरकार आई राज्य की 1954 में, तो वहां की विधानसभा ने विधिवत तरीके से प्रस्ताव पारित करके कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग घोषित कर दिया। तो मामला तो विवादास्पद न तो पहले था और न विधानसभा के द्वारा पारित करने के बाद तो रह ही नहीं गया। इसीलिए इसमें विश्व मामला, विश्व के देश कभी कभी अपने बयान दे देते हैं और पाकिस्तान इसका फायदा उठाते हुए इसे अपने यूएनओ में ले जाता है। तो दोस्तों ये इसके विवाद का जो खासकर जो नियम के तहत जो मामला है वो ये है। अब पाकिस्तान क्या तर्क देता है और वो एरिया किस तरीके का है, क्योंकि न्यूज में इस तरह की बातें आती रहती हैं, उसके बारे में मैं आप सबसे कल चर्चा करूंगा। आज चूंकि वक्त नहीं है तो मुझे अपनी बात यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। तो मित्रों अब मुख्य विषय को मैं यहीं समाप्त करता हूं। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, राम किशन कुशवाहा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, वेंकटेश पटेल हिम्मतनगर गुजरात से। और वेंकटेश आपको अपने प्रिय श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के प्री एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं। और हम सबकी शुभकामनाएं कि आगे आपको इसी तरह से सफलताएं मिलती रहें। ईमेल लिखने वाले और जो दूसरे दोस्त हैं वो हैं सूरज पॉल, खान अली मोहम्मद कश्मीर से, संजीव कुमार भोपाल से, अश्वनी द्विवेदी, राहुल दिल्ली से, अभिषेक सोनी, सलमान खान, नागेश बोथे, सौंदर्य सिन्हा रांची झारखंड से, अनीता चौधरी, अंकित कुमार सचान कानपुर उत्तर प्रदेश से और निखिल परमार। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इसी के साथ ही आज के अब इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।